तिथेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत्करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणां अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलम्णोवं गदिं पत्ते वोच्चामि समयपाहुड मीणमो सुदकेवली वणिदम। यह समय सार की पहली गाथा है और इसकी टीका अपनी जो चल रही है वो हम पृष्ठ क्रमांक 31 पर आए हैं और ऊपर से छठे लाइन तक तो हमने पढ़ लिया था। ये जो आखिरी शब्द है अपवर्ग तेनु नाम छे, जो पंचम गति जो है उसका नाम क्या कहा, अपवर्ग। धर्म अर्थ अने काम ए त्रिवर्ग कहवाय छे। मोक्ष जे छे एटले मोक्ष गति आ वर्ग मां नहीं होवा थी अपवर्ग कही। देखो यहां ऐसा कहते हैं कि कोई जीव पुरुषार्थ करेगा तो पुरुषार्थ करने के लिए उसके चार बातें बताते हैं, तो धर्म अर्थ और काम ये जो तीन पुरुषार्थ की बातें हैं वास्तव में देखा जाए तो उन बातों में इस जीव का पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। क्या कहा, जो पुरुषार्थ है उसको अगर हम द्रव्य गुण या पर्याय के माध्यम से खोजने की कोशिश करेंगे तो पुरुषार्थ ये क्या होगा? वीरेश भाई आप बताएंगे, द्रव्य है गुण है या पर्याय है? अगर कोई होगा तो तीनों का नाम बताना पड़ेगा आपको। जानते हैं भाई साहब आप पर्याय, बहुत बढ़िया। को किसकी पर्याय है? द्रव्य की। कौन से द्रव्य की? जीव द्रव्य की। कौन से गुण की? 66% मार्क तो ले लिया आपने, बहुत बढ़िया। हाँ, अब जो मूल है यानी 2-0 तो आपने ले लिए, 66 है ना, 100 एक लगेगा तो ये 2-0 को बहुत कीमत आएगी। हाँ नहीं, बोलने दो उनको, बोलने दो, सोचने दो। हाँ राजेश भाई आप बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया। वीर्य गुण के, जीव द्रव्य के वीर्य गुण की यह पर्याय है। अब मुझे ये पूछना है, ये वीर्य गुण को हम अगर पूछेंगे, जीव का जो वीर्य गुण है उसको अगर हम पूछेंगे भाई तू कहाँ रहता है, तो क्या जवाब आएगा नलिन भाई? हाँ हाँ अच्छा, क्या नाम? मिलिन भाई आप सही बताना। हाँ फिर से आपने और गड़बड़ कर दी। अपनी क्या नाम है? बोलो बहन, लक्ष्मी बहन आप बोलो। वो क्या है वीर, क्या है? हाँ तो हम उसको पूछेंगे भाई तू कहाँ रहता है, तो क्या बताएंगे आप? जीव द्रव्य के संपूर्ण भागों में, वो जीव द्रव्य का वीर गुण है ना, ये जीव द्रव्य का वीर गुण, जीव द्रव्य का वीर गुण क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको अभी तो ये पता ना ही चाहिए, और आपको पता भी है कि छह द्रव्यों में वीर गुण होता है। अब अपनी क्या बात चल रही है, तो जीव द्रव्य का वीर गुण है तो उसका जो कुछ कार्य होगा तो वह जीव द्रव्य में होगा या बाहर में होगा, अन्य द्रव्य में होगा। तो अभी अर्थेच यानी अर्थ यानी क्या, पैसा कमाना, तो ये जो पैसा कमाना का जो कोई पुरुषार्थ है, क्या यह जीव द्रव्य का पुरुषार्थ पुद्गल में चल सकता है? तो हम तो सारा सब दुनिया ऐसा मानते हैं कि पैसा कमाना ही पुरुषार्थ है। आचार्य कहते हैं ये तेरी मूर्खता का पुरुषार्थ है। क्या बता रहे? धर्म यानी यहाँ शुभ परिणाम लेना भाई, धर्मेच यानी शुभ भाव करना। क्या शुभ भाव करना यह जीव द्रव्य का स्वभाव भाव है? तो उसमें काय का पुरुषार्थ लगना है, ख्याल में आया? अब आगे कहते हैं धर्मेच अर्थेच और कामेच, प्रजोत्पत्ति का जो कोई कार्य है उसमें पुरुषार्थ लगाना है। तो यहाँ तो समझा रहे हैं कि अनादि काल से जितने द्रव्य अस्तित्व में है उससे अन्य कोई नए उत्पन्न होने वाले नहीं है, ख्याल में आया? जो है उनकी अवस्था बदलने वाली है। तो तूने क्या किया, शरीर को उत्पन्न किया? अरे शरीर तो पुद्गल है। तो ये तीनों बातें जो है, कौन सी, धर्म अर्थ और काम, इसमें जीव का पुरुषार्थ ही नहीं चलता, ख्याल में आई बात? वीरेश भाई देखो, दुनिया तो हमको उल्लू बनाती है हाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद सही दृष्टि हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ अगर जिस जीव का जो कोई पुरुषार्थ चलेगा तो वह मोक्ष के लिए ही चलेगा। तो मोक्ष में चलेगा यानी क्या, कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जब यह जीव अपने स्वरूप में ही एकाग्र हो जाएगा तब तो उसके मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए क्या कहा, ये तीन वर्ग है, ऑर्डिनरी क्लास और ये सुपर डुपर क्लास है, अप वर्ग। कौन सा? मोक्ष। देखो फिर से ये सारी बातें बताने के लिए ये यहां लिखा है ना, अभी हमने देखा था कि अपवर्ग तेनु नाम छे, कोनु पंचम गति नो व्यवच्छेद के तेनु नाम छे। तो धर्म अर्थ ने काम ए त्रिवर्ग कहवाय छे, मोक्ष गति आ वर्ग मां नहीं होवाती तेने अपवर्ग कही आई आवी पंचम गति ने सिद्ध भगवंतो पाम्या छे, तेमने पोताना तथा परना आत्मा मां स्थापी ने समयनो एटले सर्व पदार्थोनो अथवा जीव पदार्थनो प्रकाशक एवो जे प्राभृत नामनो अर्हत प्रवचननो अव्यव अंश तेनु अनादि कालथी उत्पन्न थयेल मारा अने परना मोहना नाश माटे हूँ परिभाषण करूं छूं। ये इतना लंबा वाक्य है ना, घबराना मत, बहुत आसान है। क्या कह रहे, देखो अभी कह रहे ये जो मोक्ष गति जो है वो सबसे इनसे बहुत उच्च प्रति की है, इसलिए उनको अपवर्ग हमने कहा। अब कह रहे हैं कि मोक्ष गति आ वर्गमान नहीं हुआ थी तेने अपवर्ग कही, यहां तक हो गई बात। अब कहे थे आवी पंचम गति ने भगवंतो पाम्या छे, सिद्ध भगवंतो पाम्या छे, यानी सिद्ध जीव जितने हैं उन्होंने यह पंचम गति यानी सिद्ध गति या मोक्ष गति प्राप्त की है। अभी क्या कहते हैं, तेमने यानी उन सिद्धों को पोताना तथा परना आत्मा मां स्थापिने, अभी यहां वंदित तो सब सिद्ध हो गई ना, वहां से बात वो हमने अपने में और पर में सब में उनकी स्थापना की है, ऐसा कहते हैं। તેમને પોતાના તથા પરમાત્મામાં સ્થાપીને. અબ ક્યા કહે રહે હૈ, ઉતના કરને કી બાત ક્યા કર રહે હૈ આપ, સમયનો પ્રકાશક એવો જે પ્રાવૃત. સમય કે અર્થ ઉન્હોને દો બધુ કિયે હૈ, એક તો સમય કા અર્થ દ્રવ્ય હોતા હૈ ઓર એક સમય કા અર્થ આત્મા ભી હોતા હૈ. સમય સાર યહ આત્મા હૈ, શોર્ટ મે સમય ભી કહે સકતે. હા તો ક્યા કહા, સમયનો પ્રકાશક એવો જે પ્રાવૃત, યાને પ્રાવૃત યાને યહ જો પાહુડ, યાને યહ જો સામને આપકે પાસ જો હમ શાસ્ત્ર દે રહે તો વો કૈસા હૈ, તો કહેતે સમયનો. ઉસકે દૂસરા અર્થ ક્યા બતાયા, સર્વ પદાર્થોનો અથવા જીવ પદાર્થોનો, યાને યહ જો આત્મા હૈ જિનકી હમ સ્થાપના કર રહે, સિદ્ધ ભગવાન હૈ ને, તો ઉનકા આત્મા ભી કૈસા હૈ, સ્વ કો ઓર પર કો દોનો કો જાનને વાલા હૈ, ઇસી ભી અપેક્ષા સે લે લો. યા સર્વ પદાર્થોનો અથવા જીવ પદાર્થોનો પ્રકાશક, તો યે જો સમય પ્રાભૃત જો હૈ વો ક્યા કરતા હૈ કે સર્વ પદાર્થો કા પ્રકાશન કરતા હૈ, આત્મા કા પ્રકાશન કરતા હૈ, દોનો બાતે લેના. એવો જે પ્રાભૃત નામનો, હા જી બોલો બોલો બોલો, देखो क्या समझा रहे हैं यहाँ, तो ये समझा रहे, ये जो समय प्रभुत्व में आपको दिखा रहा हूँ वो कैसा है, आपको जो बता रहा हूँ वो कैसा है कि सर्व पदार्थों को और अपने आत्मा को भी वह बताने वाला है. और वो कैसा है, ये जो प्रभुत्व है वो कैसा है, अर्हत प्रवचनों अवयव, अवयव यानी क्या, देखो अर्हंत भगवंतों ने જો કોઈ શાસ્ત્ર મે જો કોઈ દિવ્ય ધ્વનિ મે બાત બતાઈ હૈ ઉસી કે અનુસાર યહ મે પ્રાવૃત દિખ રહા હું. યે મેને અપને ઘર કી બાત કોઈ લિખી નહી હૈ, મને મતલબ કે અપને મન સે કોઈ મેને બાત નહી લિખી હૈ. યહ તો અરહંત ભગવંત કા જો પ્રવચન કહો યા જો ઉત્કૃષ્ટ એસી જો દિવ્ય ધ્વનિ હૈ, ઉસ દિવ્ય ધ્વનિ કા હી યહ એક પાર્ટ એન્ડ પાર્સિપલ હૈ, ઉસી કા એક યહ અંશ હૈ, उसी का यह एक अवयव है. अवयवी दिव्य ध्वनि है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है. तो कह रहे हैं एवो जे प्रावृत नामनो अर्हत प्रवचननो अंश अवयव, उसका अर्थ बताया अंश, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान ने जो बात बताई है उसके अनंतवे भाग जो है, जो बात बताई ना उन्होंने, ये तो आपको बहुत मालूम है કે જો કેવલ જ્ઞાન એક સમય કે જ્ઞાન મે જાને, એક સમય કે ઉસકા અનંતવા ભાગ યહ દિવ્ય ધ્વનિ મે આયા હૈ. ઓર જો દિવ્ય ધ્વનિ મે બાત આઈ હૈ ઉસકા અનંતવા ભાગ ગણધર કે જ્ઞાન મે આયા હૈ, ઓર જો ગણધર કે જ્ઞાન મે આયા હૈ ઉસકા અનંતવા ભાગ બારહ અંગ કી રચના મે આયા હૈ. और उसका ये कितनावा भाग होगा, क्योंकि जब कुंद कुंदा आचार्य हुए थे तब तो ये बारह अंग का ज्ञानधारी भी कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा अंश. पूरा अंशी को नहीं बता रहा हूं मैं, पूरा अवयवी को नहीं बता रहा हूं मैं, तो ये अवयव बता रहा हूं. जैसा हमारे ये मान लो कि 5 फुट 6 फुट का शरीर है, उसमें ये अंगूठे का नाखून कैसा एक अंग है, अंश है, वैसे थोड़ा सा उसका पोर्शन है. लेकिन वह भी कैसा है, सर्व पदार्थों को और जीव को दोनों को बताने वाला प्रकाशक है। तेनु अरत प्रवचन नो अवयव तेनु अनादि काल थी उत्पन्न थयेला मारा अने परना मोहना नाश माटे, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्या प्रयोजन है ये सारा शास्त्र लिखने का, क्या प्रयोजन हो सकता है। तो कहते अनादि काल से मेरे में मोह जो है, तो दुनिया का दुनिया जाने, लेकिन मेरे देखो क्या कह रहे, जिन्होंने तीन कषाय चौकड़ी का अभाव किया है, दर्शन मोह नष्ट कर दिया है, मान लो नहीं है उनके लिए, ऐसा जीव जिनके दर्शन मोहनी अभी बाकी है नहीं, चारित्र मोह थोड़ा सा है, वो भी संजोलन कषाय और कुछ नौ नौ कषाय, तो उनका भी नाश करने के लिए ये अनादिकालीन है। मेरे में क्या क्या कहा देखो, अनादिकाल थी उत्पन्न थयेल मारा ने परना मोहना नाश माटे हूँ परिभाषण करूं छू, यानी मैं यहाँ आपको ये बात परिपूर्णतया समझा रहा हूँ, ये भाषण दे रहा हूँ यानी लेक्चर मार रहे, ऐसी बात नहीं, ये तो भाषा है ऐसी। केवो छे ते अरहत प्रवचन नो अवयव, तो ये जो अमृत चंद्राचार्य ना वही स्वयं प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि हमारे मन में ऐसे जो शंकाएं आती हो या कोई प्रश्न उठते हो, तो वो सोच समझ कर ही उन्होंने उनके प्रश्नोत्तर के रूप में सारी बातें बताई कि वो छेते अर्हत प्रवचन नो अवयो, यानी ये जो आप शास्त्र बता रहे हैं वो कैसा है, वो भी शास्त्र की बात नहीं कर रहे, अर्हत प्रवचन नो अंश के वो छे अनादि निधन परमागम शब्द ब्रह्मति प्रकाशित हुआ थी सर्व पदार्थों न समूह ने साक्षात करना केवड़ी भगवान सर्वज्ञती प्रणित हुआ थी अने केवड़ियों ना निकटवर्ती साक्षात सांभनार तेमज पोते अनुभव करनार एवा श्रुत केवड़ी गणधर देवो ए कहेल हुआ थी प्रमाणता ने पाम्यो छे। अभी हम शॉर्ट में लेते हैं, अभी ये बड़ा वाक्य हो गया ना, तो क्या समझा रहे हैं, प्रश्न क्या पूछा, केवो छे ते अर्हत प्रवचन नो अवयव, तो कहे छे गणधर क्या गणधर देवो ये कहेल हुआ थी प्रमाणता ने पाम्यो छे, ये प्रमाण ऐसा यह अवयव है। अब उसके लिए क्या समझा रहे हैं, देखो देखो क्यों के फिर से आप ऊपर से ही लेता हूं, अनादि निधन परमागम शब्द ब्रह्म थी प्रकाशित हुआ थी, यानी यह जो शब्द ब्रह्म यानी यह जो दिव्य ध्वनि है, वह दिव्य ध्वनि कैसी है के परम आगम स्वरूप है, और वो कैसी है, तो कहते अनादि निधन है, क्योंकि यहां उनको यह समझाना है कि इस विश्व में ऐसा अनादि काल से एक भी समय गया नहीं है कि जब साक्षात तीर्थंकर विराजते न हो, यानी भगवान की अस्थि कहो उपस्थिति कहो, सर्वज्ञ भगवान इस विश्व में नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो आप कहेंगे क्या बात करते हो, समय तो यहाँ कोई दिखाई नहीं देता है, और आप तो कहते हो कि अनादिकाल से, अरे अभी वर्तमान में तो दिख रहा है हमें कोई नहीं है, तो भाई तेरे नजर में यह विश्व का स्वरूप अभी आया ही नहीं है। हम तो जानते हैं कि विश्व में जैसे हमारा भरत क्षेत्र है, ऐसे अन्य पांच भरत क्षेत्र, पांच ऐरावत क्षेत्र और पांच विधेय क्षेत्र है। तो ये विधेय क्षेत्र की क्या खासियत है, तो विधेय क्षेत्र में निरंतर किसी न किसी तीर्थंकरों की उपस्थिति रहती है, तीर्थंकरों की, हाँ तीर्थंकरों की, और उनके रोजाना दिव्य ध्वनि कीर्ति है, ख्याल में। तो ये लिखा ना अनादि निधन। अब जैसे अपने यहाँ भरत क्षेत्र में क्या कहते हैं कि चौथे काल में ही तीर्थंकर होते हैं 24, और बाकी जो पांच काल है उसमें तीर्थंकर की उपस्थिति या विद्यमानता नहीं रहती, लेकिन विधेय क्षेत्र में 20 तीर्थंकर तो होंगे होंगे और होंगे, जो हमने देखा ना कि जो एक जम्बूद्वीप होता है उसके लगत चार ठिकाने पे, वैदिक क्षेत्र में चार जगह, ऐसे पांच ये है, क्या है, पर्वत, मेरु पर्वत जिसको हम कहते पंच मेरु, तो हर एक के अपने अपने चार चार, ऐसे मिनिमम पांच चौक 20 तीर्थंकर तो रहते ही है ख्याल में। और अभी जो हमारे सीमंदर आदि जो तीर्थंकर है उनकी तो एक कोटि पूर्व की आयु है। ये 20वें तीर्थंकर से आए ना भैया, ये मुनि सुव्रतनाथ जो तीर्थंकर हुए हैं, जब से अभी के जो सीमंदर आदि जो है, हा? अभी मुनि सुव्रतनाथ से शुरुआत हुई है, 12वें तीर्थंकर जब होंगे अगले, हाँ तब तक वो ही रहेंगे। और वहां तो ऐसी बात है कि हम किसी के कॉपीकैट नहीं है, लोग हमारे कॉपीकैट हैं। क्यों? आप जब छोटी थी, जब यहां हिंदुस्तान में बाहर के लोगों का राज था तो वहां कौन था मालूम है? पंचम जॉर्ज था, है ना, याद है क्या? उसके पहले फोर्थ जॉर्ज, उसके पहले थर्ड जॉर्ज, ऐसा करते करते अभी बुश भी, दूसरा बुश आया, पहला बुश उड़ गया, दूसरा आया जूनियर। यानी क्या, हमारे यहां भी सीमंदर के बाद वहां जो कोई तीर्थंकर होंगे वो सीमंदर ही होंगे, युगमंदर की जगह युगमंदर ही होंगे, वो नाम नहीं बदलते, भले तीर्थंकर बदल जाए। तो देखो ये कब से चल रहा है, अनादिकाल से। तो अभी कौन कॉपी कैट है बोलो? पंचम जॉर्ज क्या हमारे सीमंदर? तो अपनी क्या बात है, देखो अनादि निधन परमागम शब्द ब्रह्म थी प्रकाशित हुआ थी, यानी ये जो दिव्य ध्वनि है वह कैसी है कि जो परमागम यानी वो जो कहते हैं या जिसकी रचना होती है बाद में, वो कैसे हैं? सर्व पदार्थों ना समूह ने साक्षात करनार, यानी सर्व पदार्थों के यानी विश्व के सारे पदार्थ द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय, इनको साक्षात, साक्षात यानी प्रत्यक्ष जानने वाले, ऐसे जो केवली भगवान सर्वज्ञ थी प्रणीत हुआ थी, यानी ये वाणी सर्वज्ञ ने बनाई बताई हुई होने के कारण, अनेक केवलियों ना निकटवर्ती, अभी केवलियों के साथ जो कोई आसपास होंगे निकटवर्ती, साक्षात सामरणार यानी प्रत्यक्ष उनको सुनने वाले, तेमज खाली सुनना नहीं है, तेमज पोते अनुभव करना, यानी उन्होंने भी अपने स्वभाव का स्वरूप का अनुभव किया है। जैसा हमारे घर में हमारी मम्मी बोलती है, बेटा जरा लड्डू तो चख के देख, बहुत मीठा है। नहीं 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 मेरे को नहीं चाहिए। तू पसंद करेगा, खाके तो देख। नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जबरदस्ती खिलावे तो 10 लड्डू मांग लेवे, क्योंकि साक्षात अनुभव किया ना, अरे वाह मम्मी हो तो ऐसी करके 10-5 लड्डू खा जाए, मम्मी भी खुश। तो ये क्या है, वारंवार अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं, 10 लड्डू नहीं, ये तो अधिक बार। और वो कह रहे हैं कि साक्षात सामरणार तेमज पोते अनुभव करनार, ऐसे कौन? तो श्रुत केवली गणधर देवो ये कहेल हुआ थी। देखो ये गणधर जो होते हैं, श्रुत केवली क्यों कहा, वो 12 अंग की रचना करते ना सारे परमागम को, वो वही तो उनके रचयिता है, वो तो श्रुत केवली होंगे ही होंगे। तो उन्होंने कहेल हुआ थी, ये कहेल लखेल हुआ थी कि हमने लिखी हूं, क्योंकि उनकी जो कोई रचना होती है वो अंतर मुहूर्त में 12 अंक की रचना करते हैं, ख्याल में है? तो वहां उनको लिखने को कहां टाइम है, लिखते हैं तो कितना टाइम चला जाएगा, लेकिन उस समय ज्ञान की इतनी प्रगल्भता होती है क्या कि बस वो बोल समझ लिया उन्होंने और किसी को उन्होंने समझाया तो वो भी दूसरा पूरा याद कर लेता है। इसलिए कहते गणधर देव कहल हुआ थी प्रमाणता ने पाम्यो छे कौन ते भूली गया मैं ये अवयो। तो प्रमाणता की क्या बात है कि दोनों तरफ से, एक तो सर्वज्ञ भगवान ने बताई हुई बात है दूसरी तो गणधर जैसे श्रुत केवलियों ने उसकी रचना की है, और केवल रचना की ऐसा नहीं तो प्रत्यक्ष स्वयं अपने स्वरूप का उन्होंने अनुभव किया है और बाद में कहा है। जैसे हमारे पिताजी हमको समझाते थे क्या कि बेटा तू भले दिन के 10 रुपए का धंधा कर, लेकिन एक भी पैसा किसी को उधार मत दे या किसी को किसी से उधार मत ले। तो ये तो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है और तू भी देख। तो हमने भी ऐसा अनुभव किया और हम तो सुखी रहे। और हमारे एक चाचा थे, उनको पूछा, उनको तो कुछ मालूम नहीं था, कोई धंधा पानी आता नहीं था, उनको एक फर्नीचर वर्क्स डाल के दिया, फर्नीचर बनाने का कार्य। तो धंधा किया? हाँ किया। कितना साल? ये तो मैं 60-70 साल पहले की बात बताता हूँ। 1 लाख रुपए का धंधा किया। अरे वाह शाबाश, दिखाओ कितना पैसा है तेरे पास। खाली 5,000 रुपये आया है, 95,000 उधारी है। ये स्कूल को इतना बना दिया, वो स्कूल को इतना बना दिया, हाथ में क्या आया? स्कूल भी भग गया और पैसा भी भग गया। तो क्या उन्होंने बताया कि स्वयं अनुभव किया, एक पैसा भी उधार मत दो, एक पैसा उधार मत लो। वैसा उन्होंने बताया। ऐसे यहाँ तो बता रहे कि यह जो आत्मा है वो ऐसा ऐसा है, उस आत्मा की तो बात सुनी ना के सुनी, स्वयं ने भी उसका वारंवार अनुभव किया और बाद में बताया। वो तो हम मानते हैं, लौकिक में कोई बात नहीं बेटा, तू पिता ने बताई हुई बात तो हम मानेंगे, क्योंकि उनका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है ना, तो उनकी बात तो हम मानते हैं। लेकिन यहाँ बात कहे नहीं नहीं नहीं, क्या कह रहे? देखो प्रमाणता ने पाम्य छे, अन्यवादियों ना आगमनी जेम छद्मस्त एटले अल्पज्ञानी नी कल्पना मात्र नथी के जेथी अप्रमाण होए। अभी यहाँ क्या बता रहे हैं? अन्यवादियों यानी जो जैन मतानुयायी नहीं है ऐसे, अब जो सनातन दिगंबर जैन धर्म है उससे बाकी सब अन्यवादी है। क्यों ऐसा क्यों साहब? तो कह रहे हैं अन्यवादियों की क्या बात है, तेमना जे आगमो छे ते कोने रचेला छे के छद्मस्त छे, अल्पज्ञानी नी कल्पना मात्र नथी। अरे भाई आपके ही भगवान सर्वज्ञ और उनके भगवान अल्पज्ञ, ऐसा कैसा होगा? वे भी तो सर्वज्ञ हो सकते हैं, ख्याल में? तो पहले ही बात ऐसी होती है कि सर्वज्ञ बनने के लिए पहले मुनि बनना चाहिए। मुनि बनने के लिए पहले में पहले आत्मानुभव होना चाहिए, और आत्मानुभव होने के लिए क्या अपनी श्रद्धा जो है ना, कल की बात अपनी, वो सही होनी चाहिए। और वह सही श्रद्धा होने के लिए निमित्त रूप से सच्चे देव गुरु शास्त्र ही होते हैं। अब हमारी मान्यता में हम अन्य मतलब कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को ही सच्चे देव गुरु शास्त्र माने, तो क्या हम सम्यक दर्शन होने के लिए पात्र होंगे? तो जहां सम्यक दर्शन जिसको प्राप्ति नहीं है, उसको पंचम गुणस्थान नहीं है, उसको सातवां मुनिपद का गुणस्थान नहीं है, और जो मुनि नहीं है वो श्रेणी नहीं मान सकता है, क्योंकि जो अंतरंग में स्थिरता रूप जो पुरुषार्थ है वह मुनि दशा में ही होगा, ख्याल में आया? तो ऐसी जो बात है, जो मुनि नहीं होगा वो श्रेणी नहीं मांडेगा, श्रेणी नहीं मांडेगा उसके वितरागता नहीं होगी, वितरागता जिसके नहीं होगी उसको सर्वज्ञता नहीं होगी, और सर्वज्ञता नहीं होगी उसकी दिव्य ध्वनि नहीं छूटेगी, ख्याल में आया? तो यहां क्या कह रहे हैं? अन्यवादियों ना आगमनी जेम छद्मस्त एटले अल्पज्ञानी नी कल्पना मात्र नथी के जेथी अप्रमाण होए। तो यहाँ क्या समझाना चाहते हैं? जिनेन्द्र भगवान ने बताई हुई जो बात है वही प्रमाण हो सकती है। अभी कोई ऐसा भी कह सकता है कि साहब जिनेन्द्र भगवान ने बताई हुई बात तो बहुत सही है और वह तो प्रमाण ही होती है, हम भी मानते हैं, लेकिन अभी जो यहाँ मौजूद है वह जिसको आप आगम कह रहे हो वह प्रमाण है, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि बीच में ऐसा कोई भी आ सकता है, बीच में अपनी अपनी घर की बात डाल देवे। लेकिन जो जिनेंद्र भगवान का उपदेश होता है उसमें तो हमेशा वीतरागता का ही पोषण होगा। ख्याल में कभी भी जिसको हम कहते हैं ना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेट्समैन, यानी क्या है? जो परस्पर विरोधी ऐसी कोई बातें नहीं बताई जाती है। जो भी बातें होगी वो एक दूसरे से लगती हुई के जिसके माध्यम से इस जीव को अपने स्वरूप का अनुभव हो और इसमें परस्पर विरुद्धता न हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहेंगे कि पुण्य परिणाम से बंध भी होगा और पुण्य परिणाम से मुक्तता भी होगी, तो ये कैसा कथन है? परस्पर विरोधी है ना। राग करते करते वितरागता होगी तो राग करने से तो बंध होगा, और जिससे हमें छुटकारा पाना है, जिसका हमें त्याग करना है, वही वितरागता कैसा पैदा करेगा? अरे जो हमें अच्छा लगता है, हमारे फायदेमंद होता है, उस बात को छोड़ेंगे क्या हम? फिर वह यह खोटी बात नहीं चला सकते। जैसा अभी भी हम देखते हैं ऐसा कहा है और हम सुनते भी हैं, अनुभव नहीं किया है कि बाजार में खोटी नोट बहुत चलती है। हम लाते हैं, आपने 500 रुपया दिया, हमने 500 रुपया रख लिया, क्योंकि हम मानते नहीं ये सच्ची है क्या झूठी है। ख्याल में है? लेकिन इनके पास गए हम, साहब हमको इतना है इसका दो, ये 500 रुपया नहीं चलता, ये खोटा है, खोटा है, खोटा है। क्यों खोटा है? फिर वो किधर मशीन विशीन क्या डालते हैं, देखते हैं। तो वैसा यह खोटा सिक्का या खोटी मान्यता जो होगी या खोटा कोई उपदेश होगा तो वो कोई ना कोई उसका विरोध अवश्य करेगा। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशककार ने तो ऐसी बढ़िया उसमें उदाहरण दिया है कि मोती का जो व्यापार करता है वो मोती सच्चा व्यापारी तो कभी खोटे मोती उसमें डालेगा ही नहीं, लेकिन जो खोटा मोती का व्यापार करता है वो पहले तो दिखाएगा सच्चा सच्चा मोती, बाद में उसके अंदर मिक्सचर करेगा। लेकिन जो साचा जोहरी होगा वो तो तुरंत उसको पकड़ेगा कि भाई ये गलत बात है। ऐसा अगर कोई बाद में भी उसमें कोई अपनी मनगढ़ंत बातें चलाता हो तो वह तो जो चाणाक्ष चतुर या जो ज्ञानी होगा वह तो उसको पकड़े बिना रहेगा नहीं, तो ये बात अधिक काल तक चलेगी नहीं, ये मैं कहना चाहता हूं। ख्याल में आया? तो यहां वो कह रहे कि अन्यवादियों ना आगमनी जेम छद्मस्त एटले अल्प ज्ञानी नी कल्पना मात्र नथी के जेथी अप्रमाण होय। तो जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है वह प्रमाण ही है, और उसका तो अभी हमने सारा ये भी देख लिया क्या। हाँ जी बोलो।
देखो यहाँ चौथी लाइन में लिखा है सर्व पदार्थों ने तुम्हारे साक्षात करना के लिए होगा, और उसी के अगले लिखा है कि साक्षात संभरना शुद्ध के लिए। तो ये दो साक्षात में कुछ फर्क है कि दोनों समान है? प्रश्न फिर सुना, भगवान के लिए भी साक्षात लिखा है वो भी साक्षात जाते हैं,
है वो भी साक्षात खुद से सांभरना देखा ना, तो ये दो साक्षात में कुछ असर है या नहीं, और क्या अंतर है?
आपको पता है?
नहीं, आपने वासंती बेन आप बोलना। हाँ, तो उसमें क्या फर्क है? बराबर है आपका कहना कि एक केवल ज्ञानी है। हाँ तो
देखिए साक्षात हो या प्रत्यक्ष को एक ही बात है, तो केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जानते हैं, उन्हें इंद्रिया मन आदि किसी की भी जरूरत नहीं है।
आपने उत्तर सही दिया है।
और यहाँ भी इसको भी प्रत्यक्ष कहा, यहाँ भी साक्षात शब्द लिखा, वहाँ अक्षय है आत्मा, साक्षात पहले वाला जो साक्षात है डायरेक्ट आत्म प्रदेश उनसे जानते हैं और स्पष्ट जानते हैं, और यहाँ जो साक्षात सुनते हैं इसलिए हमने उसको साक्षात देखा, यहाँ अक्षय नहीं है। यानी इंद्रियों के द्वारा जो हम हमारे सामने ये बात ले सके थे ना, हमने उसको साक्षात देखा, साक्षात सुना हमें, हमने साक्षात स्पर्श करके देखा, ऐसा जो कहते हैं उसको प्रत्यक्ष कहते, पर वो कौन सा वाला प्रत्यक्ष, व्यवहार के लिए वो प्रत्यक्ष है, वो सच्चा प्रत्यक्ष नहीं है। उसको शास्त्रीय भाषा में जरा बड़ा शब्द बोलना है तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, यानी लौकिक में जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं वो सच्चा प्रत्यक्ष नहीं, फिर भी उसको इसलिए दोनों जगह साक्षात शब्द है, फिर भी उसमें फर्क है।
देखो
यानी भगवान सभी पदार्थों को उनके गुण पर्याय, उनको तीनों काल के पर्याय को साक्षात जानते हैं, जैसे सामने हो रहे ऐसे जानते हैं, इसलिए उन्हीं का ज्ञान सच्चा है और उनका कथन भी सच्चा है, क्योंकि वे वितरांग भी है और सर्वज्ञ भी है। तो उन्होंने जो जिनवाणी में कथन किया है वो परम सत्यवाणी। दूसरी बात जो श्रुत केवली है, श्रुत केवली उन्हीं को कहते कि जिनको जिनका श्रुत ज्ञान परिपूर्ण है, श्रुत केवल ज्ञानी ने जो बताया उन्होंने तो साक्षात जानकर बताया, उन्होंने जो बताया वो साक्षात सुना, तो हमने सुनकर जाना, क्या कहा केवली ने जानकर बताया और श्रुत केवली ने सुनकर जाना और फिर उन्होंने शास्त्र की रचना की। इसलिए जो आगम जो है, जो उपलब्ध है आज हमें, जो गणधर से चला आ रहा है, वो मुख्य बात केवली ने बताई है, यानी सर्वज्ञ की ये वाणी है, और इसीलिए आगम को प्रमाण स्टैंडर्ड कहते हैं, प्रमाण है ये परम सत्य है, उसको प्रमाण कहा जाता है। तो ये प्रमाणता का यहाँ आधार बताया था कि केवली ने जो जाना है केवली ने बताया था, और वो सुनने वाले भी साक्षात केवली के मुख से सुनने वाले गणधर थे, और वो भी यानी परिपूर्ण श्रुत ज्ञानी थे, श्रुत केवली का जितना वो वाणी में आया है वो ग्रहण करके उन्होंने शास्त्र की रचना, बारह अंगों की रचना की है। इसलिए ये जो बात इसमें है वो केवल ज्ञानी ने जैसी जानी है वैसी है, तो बस शास्त्र में लिखा है इसलिए आप सच मानते हो, हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि हम इतना अच्छा ज्ञान वाले हैं ना, तो हम अपने ज्ञान को स्टैंडर्ड मानते और उसको नापना चाहते, परंतु प्रमाण का ये स्टैंडर्ड ने किसका है, तो भगवान ने बताया हुआ है, इसलिए वाणी परम सत्य है, ये बात यहाँ बताना है। इसमें आपको कुछ बताया, मुझे इसके ऊपर की बातें बताए। देखो जब समस्त समय सारा हमने वो कलश पहला पढ़ा था तो वहीं पर ये बात आई थी कि जब जब कोई भी शास्त्र शुरू करते हैं तो उसमें मंगलाचरण का, तो मंगलाचरण के द्वारा मंगल भी करते हैं, फिर उस शास्त्र का नाम बताया जाता है, निमित्त बताया जाता है, उसका हेतु यानी प्रयोजन बताया जाता है, उसका प्रमाण बताया जाता है, उसका कर्ता बताया जाता है। देखो अभी यहाँ जो ये जो टीका है वो अमृत सुंदराचार्य ने, ये जो यहाँ लिखा ना मंदिर तो सवर्जित, ये तो गाथा है, गाथा तो कुंदकुंदाचार्य ने लिखी, कुंदकुंदाचार्य ने इस गाथा में ये मंगल कैसा किया है उसकी टीका में इन्होंने एक्सप्लेन किया, टीका यानी उसकी एक्सप्लेनेशन की अधिक विस्तार से स्पष्टीकरण। देखिए नीचे से अभी जो हमने वो बड़ा वाक्य पढ़ा था कि तेमने स्वर्ण तथा पर्ण आत्मा स्थापित, पुताना तथा पर्ण आत्मा स्थापित, ये तो मंगल करे ना, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया ये तो मंगल हुआ, शुरू ग्रंथ की शुरुआत में सिद्धों को नमस्कार किया ये मंगल किया ना उन्होंने। अभी फिर नाम बताया, क्या कहते हैं कि समय नो प्रकाशक एवो जे प्रावृत नाम नो अंश अर्थ प्रवचन अंश, यहाँ समय प्रावृत ये उसका नाम बता दिया, ग्रंथ का नाम आ गया। फिर
हेतु
निमित्त का, अभी सुनने वाले वो निमित्त है, सामने जो शिष्य है, और प्रयोजन क्या है इसका, तो अपने तथा पर के
मोह के नाश के लिए,
ये उसका प्रयोजन हुआ शायद। और उसमें फिर हेतु हो गया प्रमाण, अभी प्रमाण इससे 415 गाथा हुए यहाँ नहीं लिखा है, परंतु ये हूँ मैं इसका परिभाषण करता, मैं इसको लिखता हूँ, तो उसको कर्ता भी बताते हैं। तो इस तरह से इसमें जो मंगलाचरण की जो कोई भी ग्रंथ शुरू करने के पहले 6 बातें बताई जाती है वो सब इसमें आ गई।
हो गया। देखो यहाँ पर जो उन्होंने बात उठाई थी वो बात का थोड़ा सा मैं उसमें एक्सप्लेनेशन उन्होंने बताया नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आपके कहाँ तक ख्याल में आया है। देखो यहाँ अक्ष नाम का जो शब्द है उसके अनेक अर्थ है, यहाँ दो अर्थ लिए हैं। हाँ, एक अक्ष का अर्थ होता है कि आत्मा और दूसरे अक्ष का अर्थ होता है आंख। इंद्रिय कहो आंख कहो एक ही है, ख्याल में अनेक अनेक अर्थ बताए ना। चक्षु हम बोलते हैं ना तो उसमें भी अक्ष आता है, ख्याल में है। हाँ मैंने बहुत बताया ना, मतलब तो मैं यही मैं और लंबा ना नहीं चाहता क्योंकि आपने को वो जो साक्षात स प्लस अक्ष कहो या साक्षात कहो यानी एक आत्मा के माध्यम से, क्योंकि हमने तो देखा है केवली भगवान जो होते हैं यानी जो सर्वज्ञ होते हैं उनके देखो पहले तो हमने ये देखा था कि ज्ञान गुण जो है वो आत्मा के असंख्यात प्रदेश में इक्वली स्प्रेड आउट है, मतलब पूरे भाग में व्यापा हुआ है। ऐसा नहीं कि जहां हमारा ये ब्रेन है उधर ही अज्ञान है और इधर इधर सुख नाम का गुण है, ऐसा नहीं है। वो पूरे आत्म प्रदेशों में ज्ञान गुण है, लेकिन अभी हमें जो क्षभम ज्ञानी जीव है मतिश्रुत ज्ञानी जीव जो है वह तो विशिष्ट इंद्रियों के पीछे जो आत्मा के प्रदेश होंगे उनके माध्यम से ही उसका उस इंद्रिय का विषय जानेगा। अब वहां केवली भगवान जो है वह तो उनके एक एक प्रदेश में से उनको पूर्ण ज्ञान हो रहा है, क्योंकि ज्ञान जो केवल ज्ञान रूपी जो पर्याय है वह तो पूर्ण प्रदेशों में व्याप्त है ना, तो उससे ले उसको साक्षात यानी आत्मा के सहित का जो आत्मा के माध्यम से या आत्मा का ही जो ज्ञान है उसको वहां साक्षात कहा गया है। और यह जो है साक्षात तो वह तो क्षम ज्ञानी का जो इंद्रियों के माध्यम से हुआ जो ज्ञान है, अभी वहां तो उन्होंने इंद्रियों के माध्यम से यानी सो अक्ष ऐसा लिया है इसलिए वो साक्षात का अर्थ जुदा होता है। पर पहले हाँ ऐसा लेना हो इन शॉर्ट अभी लौकिक के साक्षात के तो अनेक प्रकार देखने में आते हैं। एक मजा बोल के बताता हूँ, ये लोग तो सुन चुके हैं लेकिन हमको किसी ने बताया कि मेरे पिताजी तो गुजर गए थे लेकिन कह रहे हैं कि मैंने आपके पिताजी को देखा। बोला अच्छा कब देखा? बोला मैंने तो उनको साक्षात देखा लेकिन कब? तो कल मेरे सपने में आए थे। हाँ तो ये सपने में भी मिलना साक्षात होता है, ऐसा साक्षात का अलग अलग अर्थ है। लेकिन वो तो यहाँ तो अपने को तो वो तो समझाने के लिए मैंने बताया, ये तो यहाँ साक्षात का अर्थ तो हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ आपको बताने जी? हाँ अभी भावार्थ क्या लिखा है देखते हैं। गाथा सूत्र मा आचार्य वक्ष्यामि कयूं छे ने तेनो अर्थ टीकाकारे वच परिभाषणे धातु थी परिभाषण करियो छे तेनो आशय आ प्रमाणे सूचित थाय छे 14 पूर्व मा ज्ञान प्रवाद नामना 5मा पूर्व मा 12 वस्तु अधिकार छे। अभी ये क्या है ये सब? नहीं नहीं समझना हो तो बहुत लंबी लंबी बात है। या तो ऐसा है कि 12वां जो अंग है उसमें 14 पूर्व होते हैं, तो उस 14 पूर्व में 5वां नंबर का जो पूर्व है उसका नाम है ज्ञान प्रवाद, और वह जो ज्ञान प्रवाद है उसमें 12 वस्तु नाम के अधिकार है। ये अभी जैसा वो प्रकरण कहते हैं वैसा वस्तु भी एक कोई कैसा माप है। बहुत अच्छा अधिकार छे तेमा पण एक एक ना 20-20 प्रावृत छे यानी एक वस्तु 20-20 प्रावृत की बनी हुई होती है। अब कहते हैं अधिकार छे तेना तेमा दशमा वस्तुमा समय नामनु जे प्रावृत छे तेना मूल सूत्रोना शब्दोनु ज्ञान तो वृतनु परिभाषण करियो, परिभाषण है नहीं उसके ऊपर व्याख्यान किया समझाया, परिभाषा सूत्र बांधियो, सूत्रनी दस जातियो केवामा आवी छे, तेमा एक परिभाषा जाति पण छे, यानी परिभाषा नाम का एक सूत्र का भी कोई प्रकार है। अधिकार ने जे यथास्थान मा अर्थ द्वारा सूचवे ते परिभाषा कहवाय छे। श्री कुंदकुंदाचार्य समय प्रावृत नु परिभाषण करे छे, एटले के समय प्रावृत ना अर्थ ने ज यथास्थान मा जणावनारु परिभाषा सूत्र रचे छे। अभी ये क्या है कि थोड़ा सा इसका पहले हमें अभ्यास होगा तो ये बात हमें समझ में आएगी, ये प्रावृत किसका होता है, प्रावृत में क्या क्या होता है, फिर उसके ऐसे भेद करते करते बहुत भेद हो जाएंगे। तो यहाँ इतना ही समझना कि ये एक ग्रुप में से छोटा ग्रुप, छोटे ग्रुप में से और उसका छोटा ग्रुप, उसके में से और एक छोटे ग्रुप की ये सारी बात है, बस इतना ही समझ लेना। आचार्य मंगल, अगर आपको चाहिए हो तो मैं कल आपको समझाऊंगा, अभी तो मेरे पास सामने किताब नहीं है और समय भी नहीं है। ये आपको ये समझना हो तो फिर आप कहेंगे। हाँ नहीं नहीं
कहना चाहती, जो शुद्ध ज्ञान के जो भेद है पर्याय जो अंत में कहाँ तक हम गए, ये जो है ना वो बारह अंग वगैरह सब, तो बारह अंगों में यानी ये सब इतना सारा बताने का प्रयोजन क्या है उसको कहिए। कुंदकुंदाचार्य कोई कहेगी ना कि ये कोई छद्मस्त की रचना नहीं है ऊपर जो बताया, तो कुंदकुंदाचार्य ने भी अपने मन से ये रचना नहीं की, तो उसका उगम स्थान कौन सा है? तो जो केवल ज्ञानी ने जो बताया था दिव्य ध्वनि में जो आया था उसके अनुसार गणधर्म ने सुनकर बारह अंगों की रचना की, तो बारह अंगों की रचना में जो बारहवा अंग है तो बारहवें अंग में जो ये जो पूर्व जो होते हैं चौदह पूर्व उसमें जो ज्ञान प्रवाद नाम का जो पूर्व है
पांचवा
पूर्व उसमें जो कितने पांच होते हैं जिसको कमलेशन कहेंगे जो कुछ है तो उसमें जो दसवां जो वस्तु है उसमें ये जो समय नाम का जो प्रारूप उसमें आया था उसके यानी डिटेल उसका स्पष्टीकरण करके उन्होंने ये परिभाषा दी, यानी जो समय स्थान हम कहते हैं उसका समय प्रारूप था, उन्होंने उसका नाम समय प्रारूप था, समय प्रारूप को समय पावर को जो उसी को भी हम समय सार भी कहते हैं। तो ये शास्त्र किसी के अल्प ज्ञानी की रचना नहीं है, मूल भगवान ने दिया हुआ उपदेश ही उन्होंने फिर से दोबारा उसी को यानी जो मूल वहाँ तक चलता आया था कुंदकुंदाचार्य तक उसी को उन्होंने लिखित रूप से यहाँ समझाया, इसलिए उसका प्रमाणता बताने के लिए मूल आगम से ये आया है ये यहाँ बताना चाहते हैं इतनी बात।
आप जो कह रहे हैं वह तो श्रुत ज्ञान के भेद की बात है, ये श्रुत ज्ञान के भेद नहीं है, वो हम कल देखेंगे अगर आप चाहते हैं तो। डवला में क्यों, आप सम्यक ज्ञान चंद्रिका में मिलेगा ना अपने, वो तो आसानी से फटाफट समझा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। आचार्य मंगल अर्थे, मंगल अर्थ यानी मंगल के कारण सिद्धों ने नमस्कार कर्यो छे, संसारी ने शुद्ध आत्मा साध्य छे अने सिद्ध साक्षात शुद्धात्मा छे, साक्षात शुद्धात्मा यानी क्या, उनके पर्याय में भी शुद्धता व्यक्त हुई है बराबर प्रकट हुई है, तेथी तेमने नमस्कार करवो उचित छे, कोई इष्टदेव नु नाम लई नमस्कार केम न करियो, तेनी चर्चा टीकाकारना मंगल पर करेली छे ते अहीं पण जाणवी। सिद्धो ने सर्व एवं विशेषण आप्युं छे, वंदित सर्व सिद्धे लिखा ना तो विशेषण आप्युं छे, तेथी ते सिद्धो अनंत छे एवो अभिप्राय बताव्यो छे अने शुद्ध आत्मा एक ज छे एवू केनार अन्यमती नो व्यवच्छेद करियो। ये क्या कहते हैं, जो एक ही पूरे विश्व में व्याप्त ऐसा एक ही भगवान है और हम उसके अंश है, ऐसा बताते ना। और दूसरी भाषा में बोलना हो तो ज्योत से महाज्योत में विलीन हो जाना वगैरह वगैरह, यानी हम उसके अंश है ऐसा बताते। वो कहते हैं कि जब ऐसा बता रहे कि शुद्ध आत्मा एक अच्छ है, सिद्ध अनेक है, प्रत्येक आत्मा अलग अलग शुद्ध है, तो उस पर से कहते हैं अन्य मती नो व्यवच्छेद करियो। कि जे एम कह जी कि शुद्ध आत्मा एक अच्छा ऐसा कहने वाले का यहाँ निराकरण कर दिया। श्रुत केवड़ी शब्द ना अर्थमा, श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप आगम अने केवड़ी अर्थात सर्वज्ञ देव कया, यानी श्रुत केवली के दो अर्थ किए उन्होंने। एक तो केवली भगवान को भी श्रुत केवली कहते हैं, दूसरी बात श्रुत अपेक्षा केवड़ी समान एवा गणधरादि विशिष्ट श्रुत ज्ञान धरो कया, यानी सिर्फ श्रुत जो है, यानी यहाँ जो कई आगम की बात है उसकी अपेक्षा से केवली समान उनका भी ज्ञान है, लेकिन उनका ज्ञान प्रत्यक्ष है और इनका ज्ञान परोक्ष है, इतना समझना। क्योंकि वे क्षायिक ज्ञानी नहीं है ना, क्षेपक्षम ज्ञानी है, तो इसलिए क्या क्या श्रुत अपेक्षा एक केवड़ी समान एवा गणधर देवादि विशिष्ट श्रुत ज्ञान धरो कया तेमना थी समय प्राभूतनी उत्पत्ति कही छे। ए रीते ग्रंथनी प्रमाणता बतावी अने पोतानी बुद्धि थी कल्पित कहेवानो निषेध कर्यो। अन्यवादी छद्मस्त पोतानी बुद्धि थी पदार्थनु स्वरूप गम्मे ते प्रकारे कही विवाद करे छे तेनु असत्यार्थपनु बतायवो। देखो यहाँ पर एक मैं बात अभी याद आ गई इसलिए बताना चाहता हूँ। देखो अन्यमती में ऐसे भी कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य है वो बहुत सराहनीय है और हरेक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके लिए वो बताते कि इनके हनुमान नाम के कोई देव है तो वे भी ब्रह्मचारी थे, ऐसा ऐसा, और ब्रह्मचर्य जैसा उत्कृष्ट कोई भाव नहीं है। और एक कोई स्त्री मरकर स्वर्ग में गई तो उसको अंदर नो एंट्री का बोर्ड लगाया, क्या नाम है उसका याद है आपको, सती अनुसया, वो सती थी और उसका देहांत हो गया, ऊपर गई तो बोले अपुत्रस्य गति नास्ति, यानी जिसको पुत्र ने उसको यहाँ मोक्ष स्वर्ग में परमिशन नहीं है। एक दफे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट और एक दफे कहते हैं कि पुत्र होना चाहिए नहीं तो तुम्हें आना नहीं मिलेगा, यानी ऐसी जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये तो अन्य मतियों की कल्पना है। अभी ऐसा कहते हैं कि वो यम आता है एक एक उठा के लेके जाता है और वो चित्रगुप्त होता है, वो सबका जोखा लोखा देखता है, इसने कितना ये किया वो किया वो किया। यहाँ तो आचार्य कहते एक समय के मतलब एक श्वास के 18वें भाग में अनंत जीव मरते हैं। अभी इसका एक समय कितना छोटा, एक श्वास कितना छोटा, एक श्वास में 18 बार, एक श्वास कितना मालूम है बेन आपको, ये हमारी नाड़ी होती है ना, ये ठक 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 ऐसे करती है ना, तो ये एक ठक और दूसरा ठक, ये जो दो ठक का बीच में जो कोई दो नाड़ी के ठोके होते हैं उसमें जो कोई गैप है उसको एक श्वास कहते हैं। और ये एक श्वास के 18वें भाग में अनंत निगोदिया जीव, किसमें, यह आलू प्याज आदि में, ऐसे निगोदिया जीव एक एक श्वास के 18वें भाग में मरते हैं। अब ऐसा कहते हैं कि ये इतने मरे हुए जीवों को कौन सी गति देना, क्या कर देना, कौन नक्की करेगा, तो ये चित्रगुप्त का तो चित्र पलट जाएगा। ये ऐसी सारी बातें जो है वह तो सारी काल्पनिक है, काल्पनिक। वो कौन सत्यवान मर गया तो उसकी बीवी, उसने बोला नहीं मैं मेरे पति को नहीं जाने दूंगी और उसने उसको रोक लिया, ये कैसी बातें हैं ख्याल में है। ये सब कपोल कल्पित अन्यमतिवादी, क्योंकि सब कैसे हैं, अल्पज्ञ है, एक लिख के जाता है, दूसरे को मालूम नहीं पहले ने क्या लिखा है, वो उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रेडिक्टरी कुछ लिख के जाता है। तो देखो अपनी जिनेन्द्र भगवान की वाणी है ना, अपौरुषेय है, नहीं समझ में आया, ये ने किसी पुरुष ने बनाई हुई नहीं है। छद्मस्थ ने, अरे छद्मस्थ जिनेन्द्र भगवान कहां वाणी बनाता है, ये तो नक्की करो। जो वाणी का करता जिनेन्द्र भगवान है कहेंगे तो जिनेन्द्र भगवान की बात छुट्टी कर देंगे हम, कहते वाणी का करता तो भाषा है, मतलब पुद्गल है वो, जिनेन्द्र भगवान थोड़ी कहते। लेकिन ये पुण्य का ऐसा उनके महान उदय है, ये निमित्त की भाषा है कि उनके निमित्त से जो भाषा वो निकलती है वो उनके जैसी अखंड अभेद होती है, निरक्षरी होती है। ख्याल में आया? तो यहां कह रहे हैं कि पोतानी बुद्धि थी पदार्थनु स्वरूप गम्मे ते प्रकारे कई विवाद करे, कौन छद्मस्थ तेनु असत्यार्थपनु बताव्यू। आ ग्रंथ में अभिधेय संबंध प्रयोजन तो प्रकट छे, यानी अभिधेय यानी उसका नाम, संबंध यानी ये किसके साथ किसके साथ संबंध रखता है, प्रयोजन क्या है, ये सारी बातें तो अभी बताई। शुद्ध आत्मानु स्वरूप ते अभिधेय छे, आत्मान यानी समय सार यह उसका नाम है, तेना वाचक आ ग्रंथना शब्दो छे तेमनो, अने शुद्ध आत्मानो वाच्य वाचक रूप संबंध ते संबंध छे। ये वाच्य और वाचक का अर्थ मैंने पहले बताया था, आपको याद है ना सबको, वाचक यानी कहने वाला शब्द, और वो शब्द जो वाचक जिस शब्द से कहता है वह जो पदार्थ है वह वाच्य। तो यहाँ समय सार यह है वाचक, और शुद्ध आत्मा है वह वाच्य, तो ये संबंध उनका ऐसा है। शुद्धात्मा ना स्वरूपनी प्राप्ति थवी ते प्रयोजन छे। अभी यहाँ ही हम रुकते हैं, क्योंकि अभी अपने को क्या करना है, शुद्धात्मा ना स्वरूपनी प्राप्ति, तो अपने को टाइम मांगता है ना, तो 12 घंटा आपको नहीं, आज कौन है, सैटरडे आज, चलो आपको 24 देते हैं, 48 चल लो, जो चाहिए सो ले जाओ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सो